रेडियो नेपाल है। अब मुकेश कुमार मिश्र से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। त्रिभुवन विमानस्थल आज से करीब 5 महीने तक दैनिक 10 घंटे होगा बंद। विमानस्थल संचालन के समय में कटौती होने के बाद उड़ान में उत्पन्न समस्या के समाधान ढूंढने का परराष्ट्र मंत्री डॉ आरजू राणा ने किया आग्रह। सुप्रीम कोर्ट के लिए प्रस्तावित 2 न्यायाधीशों के नाम संसदीय सुनवाई समिति ने सर्वसम्मति से किए अनुमोदित। देश के 2 अलग अलग स्थानों में हुई सड़क दुर्घटनाओं में 10 लोगों की हुई मौत, 30 से अधिक घायल। और अमेरिका के चीफ ऑफ स्टाफ पद पर सुसी विल्स हुई नियुक्त। अब समाचार विस्तार से। समसामयिक राजनीति, सरकार संचालन, गठित समन्वय संयंत्र, उपनिर्वाचन लगायत विषयों में विचार विमर्श के लिए नेकपा एमाले ने कल शनिवार को सचिवालय बैठक बुलाई है। एमाले प्रचार विभाग प्रमुख राजेंद्र गौतम ने बताया कि बैठक कल सुबह 11 बजे पार्टी कार्यालय चैसल ललितपुर में बुलाई गई है। संसदीय सुनवाई समिति ने सुप्रीम कोर्ट के लिए प्रस्तावित न्यायाधीशों नृपध्वज निरौला और नित्यानंद पांडे के नाम सर्वसम्मति से अनुमोदित किए हैं। समिति की आज की बैठक ने सुप्रीम कोर्ट के लिए प्रस्तावित न्यायाधीशों निरौला और पांडे की संसदीय सुनवाई करके सर्वसम्मति से उन्हें अनुमोदित किया। ये जानकारी समिति के सभापति ज्येष्ठ सदस्य पशुपति शमशेर राणा ने दी। उप प्रधान एवं शहरी विकास मंत्री प्रकाश मान सिंह ने कहा कि देश की मुख्य शहरी चुनौतियों को संबोधित करने के लिए यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम यूएन हैबिटेट के साथ सहकार्य किया जाएगा। इजिप्ट के कायरो में जारी वर्ल्ड अर्बन फोरम आज यूएन हैबिटेट के एशिया और प्रशांत क्षेत्रीय प्रतिनिधि काजुको इसिगाकी और नेपाल के लिए संयुक्त राष्ट्र संघीय आवासीय प्रतिनिधि हाना सिंगर हेमडी के साथ उप प्रधानमंत्री सिंह ने मीटिंग की थी। मीटिंग में उन्होंने इस बात पर बल दिया कि नेपाल को सामना करनी पड़ रही शहरी चुनौतियों को संबोधित करने के लिए सहकार्य जरूरी है। मौके पर उन्होंने यूएन हैबिटेट का निरंतर सहयोग रहने की प्रतिबद्धता जताई थी। त्रिभुवन विमानस्थल कार्यालय ने मरम्मत के लिए आज से करीब 5 महीने तक दैनिक 10 घंटे विमानस्थल को बंद रखने की पूर्व सूचना को क्रियान्वित किया है। इस वजह से विदेशी वायुसेवा कंपनियों ने काठमांडू उड़ान में कटौती की है और इसी को कारण बताकर वायुसेवा कंपनियों ने भी नेपाल से होने वाली उड़ानों में किराए को 2 गुना बढ़ा दिया है। इस बीच परराष्ट्र मंत्री डॉ आरजू राणा देववा ने विमानस्थल संचालन के समय में कटौती से हवाई उड़ान में होने वाली समस्या का समाधान ढूंढने का आग्रह किया है। परराष्ट्र मंत्री डॉ राणा ने आज परराष्ट्र मंत्रालय में श्रम मंत्री शरद सिंह भंडारी और संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री बद्री पांडे सहित की बैठक में मौजूदा परिस्थिति का निकास ढूंढने का आग्रह किया। मंत्री डॉ राणा ने कहा कि जरूरत पड़ने पर वे कूटनैतिक पहल करेंगी। बता दें कि विमानस्थल की मरम्मत होने की सूचना 6 महीने पहले ही साझा की जा चुकी थी। मौके पर संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री पांडे ने कहा कि यह गलत है और समस्या के समाधान के विकल्पों पर विचार विमर्श हो रहा है। सुर्खेत तैलक सड़क खंड के रानीमत्ता में आज फोर्स गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त होने से 4 लोगों की मौत हो गई और 30 लोग घायल हो गए। तैलक से सुर्खेत चढ़ती हुई फोर्स गाड़ी तेज गति के कारण सड़क से करीब 200 मीटर नीचे गिर गई। इस हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। जिला प्रहरी कार्यालय सुर्खेत के अनुसार इस हादसे में दैलह की भैरवी गांव पालिका 5 के गाड़ी चालक 38 वर्षीय सुरेश केसी, वार्ड नंबर 2 के 36 वर्षीय कर्ण बहादुर विष्ट, वार्ड नंबर 1 की 16 वर्षीय दीपिका मेहतारा और 21 वर्षीय संगीता विष्ट की मौत हुई है। आज दोपहर 2:30 बजे के करीब दैलह बाजार से सुर्खेत जाती हुई कर्णाली प्रदेश 02001-0998 नंबर की फोर्स गाड़ी अनियंत्रित होने से यह हादसा हुआ। हादसे में 30 घायलों में से 3 की हालत गंभीर है। घायलों का इलाज प्रदेश अस्पताल कालागांव सुर्खेत में चल रहा है। ये जानकारी जिला प्रहरी कार्यालय सुर्खेत ने दी है। गाड़ी में 34 यात्री सवार थे। दूसरी तरफ आज सुबह नारायणगढ़ मुगलिन सड़क खंड के 17 किलो में हुई वाहन दुर्घटना में मारे गए 5 लोगों की शिनाख्त हुई है। आज सुबह 3 बजे मुगलिंग से नारायणगढ़ की तरफ आती हुई बागमती प्रदेश 06001-0298 नंबर की इलेक्ट्रिकल माइक्रो बस और नारायणगढ़ से मुगलिंग की तरफ जाती हुई बागमती प्रदेश 03001-2812 नंबर की बस के आपस में टकराने से 5 लोगों की मृत्यु हुई थी। मरने वालों में गोरखा की आरूघाट गांव पालिका एक मानवू के 42 वर्षीय राजबहादुर गुरुंग, माइक्रो बस चालक चितवन की खैरहानी नगर पालिका 4 के 40 वर्षीय अनोज अधिकारी, विनय त्रिवेणी गांव पालिका 4 बगैचा के 35 वर्षीय संतोष भूषाल व 33 वर्षीय सविना भूषाल और भारत के निवासी और किराना दुकान पोखरा में किराना दुकान चलाते आ रहे 36 वर्षीय राजकुमार शाह शामिल हैं। मृतक सभी माइक्रो बस के यात्री थे। ये जानकारी जिला प्रहरी कार्यालय चितवन के प्रवक्ता डीएसपी भेषराज रिजाल ने दी। घायलों में से एक की हालत गंभीर बताई गई है, उनका इलाज भरतपुर शिक्षण अस्पताल में चल रहा है। वहीं अन्य 4 घायलों को इलाज के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया है। एक अन्य सड़क हादसे में चितवन में बोलेरो की टक्कर से साइकिल यात्री की मौत हो गई है। भरतपुर महानगर पालिका 5 स्थित नयन चौक पर आज दोपहर 12 बजे 9469651 नंबर की बोलेरो ने साइकिल को टक्कर दी थी। इस दुर्घटना में साइकिल चालक परसा सखुआ परसौनी गांव पालिका 4 निवासी और पिछले समय गैड़ाकोट नगर पालिका 5 में किराए के घर में रह रहे 17 वर्षीय ईशान अंसारी की मौत होने की जानकारी जिला प्रहरी कार्यालय चितवन ने दी। टक्कर देने वाले बोलेरो चालक गाड़ी के साथ पुलिस के नियंत्रण में है। नेकपा एकीकृत समाजवादी ने आगामी मार्गशीर्ष 16 अगस्त होने जा रहे स्थानीय तह उपचुनाव के लिए उम्मीदवार के नाम सिफारिश करने के लिए संबंधित प्रदेश कमेटी को निर्देश किया है। सचिव सोम प्रधान पांडे ने बताया कि पार्टी ने ऐसे नेताओं की पहचान की है जो स्थानीय तह की जरूरतों को समझते हैं, जिनके पास अनुभव है, संगठनात्मक कौशल है, जो लोगों की समस्याओं को हल कर सकते हैं और जो विकास के काम करने में सक्षम हैं। ऐसे नेताओं की पहचान कर कार्तिक महीने के भीतर सिफारिश करने का संबंधित प्रदेशों को निर्देश किया गया है। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
नेपाल टेलीकॉम को 4G भिडियो कल गर्दा नो बोर जी नेपाल टेलिकम को 4G
सबै को यो विश्वास हो नि नेपाल टेलिकम को 4G
गेम खेल्दा नि टेन्सन नो जी नेपाल टेलिकम को 4G आफ्नो भन्ने आप नै हो जी नेपाल टेलिकम को 4G
नेपाल टेलिकम राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही छठ पर्व आज संपन्न हुआ। 4 दिनों तक मनाए जाने वाला इस पर्व का आज चौथे दिन पारण हुआ। पारिवारिक सुख शांति समृद्धि रोग मुक्ति और मनोकामना पूर्ति के उद्देश्य से छठ श्रद्धापूर्वक मनाया जाता है। तराई मधेश के जिलों में मनाए जाने वाले छठ पिछले समय राजधानी काठमांडू समेत देश के पहाड़ी तथा हिमालयी जिलों और विदेशों में भी मनाया जाने लगा है। नेपाली कांग्रेस के महामंत्री गगन थापा ने कहा कि धार्मिक दृष्टिकोण से मधेश की संस्कृति और परंपराएं ऊंची हैं। तराई मधेश में भव्य रूप से मनाए जाने वाले छठ पर्व को देखने के बाद आज बारा के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल गढ़ी माई पहुंचे महामंत्री थापा ने कहा कि देश में रहने वाले विभिन्न समुदायों भाषाओं धर्मों और संस्कृतियों को समझकर ही देश को समझा जा सकता है। नेपाल टेलीविजन और रेडियो नेपाल को सार्वजनिक प्रसारण संस्था में परिवर्तित करने संबंधी आईन आज से लागू हो गया है। आईन प्रमाणीकरण के 31वें दिन से लागू होने वाले कानूनी प्रावधान के अनुसार नया आईन आज से लागू हुआ है। राष्ट्रपति रामचंद्र पोडेल ने बीते आश्विन 22 गति को सार्वजनिक सेवा प्रसारण आईन 2081 का प्रमाणीकरण किया था। नया आईन क्रियान्वित होने के साथ ही नेपाल टेलीविजन और रेडियो नेपाल को सार्वजनिक प्रसारण संस्था में रूपांतरित करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का रास्ता खुल गया है। बता दें कि सार्वजनिक प्रसारण संस्था की संचालक समिति का गठन न होने तक दोनों संस्थाओं की संचालक समितियां यथावत रहेंगी। बीते आश्विन के दूसरे सप्ताह में बाढ़ व भूस्खलन से क्षतिग्रस्त बीपी राजमार्ग पुनः निर्माण के लिए जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग नियोग जाइका की प्राविधिक टोली ने स्थलगत अवलोकन शुरू किया है। जाइका की प्राविधिक टोली द्वारा 2 बार अवलोकन किए जाने के बाद आगामी दिसंबर महीने के पहले हफ्ते तक में प्रतिवेदन सहित निर्णय लिया जाएगा। ये जानकारी डिवीजन सड़क कार्यालय भक्तपुर के प्रमुख सीनियर डिवीजनल इंजीनियर सुमन योगेश ने दी। बीपी राजमार्ग अंतर्गत काभरे पलानचौक के चौकी डांडा से सिंधुली के बरखे नदी तक के सड़क खंड में अधिकांश स्थानों में क्षति पहुंची है। बाढ़ व भूस्खलन से अवरुद्ध राजमार्ग दो हफ्ते के बाद संचालन में भले ही लाया गया है, लेकिन सूखे भूस्खलन का खतरा अभी भी बरकरार है। इसलिए बीते आश्विन 30 गते से ही शाम 6 बजे से 10 घंटे तक रात के समय में यातायात संचालन पर रोक लगाई गई है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव जीतने के बाद पहली नियुक्ति की है। उन्होंने सूसी विल्स को व्हाइट हाउस चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया है। वे इस पद पर नियुक्ति पाने वाली अमेरिका की पहली महिला हैं। सूसी विल्स ने पर्दे के पीछे रहकर ट्रंप की जीत में बेहद अहम भूमिका निभाई है। वे ट्रंप के चुनाव अभियान की प्रमुख भी रही हैं। सूसी विल्स व्हाइट हाउस में दिन प्रतिदिन के कामकाज को संभालेंगी। विल्स रिपब्लिकन पार्टी की एक राजनीतिक कार्यकर्ता हैं। वे व्हाइट हाउस के कर्मचारियों का प्रबंधन करेंगी। राष्ट्रपति के समय और कार्यक्रम को तय करने में विल्स की भूमिका अहम होगी। कहा जा रहा है कि विल्स व्हाइट हाउस में ट्रंप को बुद्धिमानीपूर्ण फैसले लेने में सलाह देंगी। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11 से 13 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 24.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 13.2 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल आज से करीब 5 महीने तक दैनिक 10 घंटे होगा बंद। विमानस्थल संचालन के समय में कटौती होने के बाद उड़ान में उत्पन्न समस्या के समाधान ढूंढने का परराष्ट्र मंत्री डॉ आरजू राणा ने किया आग्रह। सुप्रीम कोर्ट के लिए प्रस्तावित दो न्यायाधीशों के नाम संसदीय सुनवाई समिति ने सर्वसम्मति से किए अनुमोदित। देश में अलग अलग स्थानों में हुई सड़क दुर्घटनाओं में 10 लोगों की हुई मौत, 30 से अधिक घायल। और अमेरिका के चीफ ऑफ स्टाफ पद पर सूसी विल्स हुई नियुक्त। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।